समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी और डेडलाइन में बात करेंगे हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर, या बात करेंगे अन्य दूसरे महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर भी। बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या है जिनका जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं हिमांशु कांडपाल और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार हिमांशु, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। नौर हज़्वे दस्तूर हम हाजिर हैं देश की परिक्रमा करने के लिए। वी विल बी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ द शो व्हेन वी टेक यू टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री वेयर आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव डिफरेंट इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल। एंड हिमांशु, वी ऑल नो दैट द पोलिटिकल फर्वर इज वेरी चार्ज्ड बिकॉज ऑफ द यू नो कैंपेनिंग दैट इज गोइंग ऑन।
आम चुनाव जो है अब बिल्कुल दहलीज पर आ गए हैं, प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, विभिन्न चरणों का प्रचार है। लोकतंत्र का पर्व भी इसे कहा जाता है, महापर्व है बल्कि, क्योंकि आम चुनाव है और हर तरह का कलर फर्वर आपने जो बोला वो देखने को मिल रहा है।
देखने को मिल रहा है, हम लोग भी उसकी झलक अपने इस आधे घंटे के शो में दिखाएंगे।
शायद ही कोई ऐसा नागरिक हो जो इससे अछूता रहे।
एब्सोल्युटली, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट रियली एम्पावर्स ईच सिटीजन। हम और आप जब भी वोट देने जाते हैं तो एक अलग सी ताकत और एक गर्व सा महसूस होता है दैट यस वी have voted. So yes, on that note, let's begin today's show with the headlines first. Bharatiya Janata Party releases its election manifesto for Lok Sabha polls. Promises uniform civil code, one nation, one election, single electoral roll and provision of free ration for the next 5 years under PM Garib Kalyan Ann Yojana.
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इंडिया एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न ओवर एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन इसराइल एंड ईरान, कॉल्स फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
एंड इन IPL क्रिकेट, कोलकाता नाइट राइडर्स टू लॉक ऑन विद लखनऊ सुपर जायंट्स, वन मुंबई इंडियंस टू टेक ऑन चेन्नई सुपर किंग्स। And now it's time for our segment Dateline India, and today Himanshu, the most important you can say topic is of course Ambedkar Jayanti. The nation is paying homage to Dr. B.R. Ambedkar, who is the architect of our constitution. Ambedkar Jayanti, also known as Bhim Jayanti, is observed annually on 14th April to commemorate the birth of Dr. Bhimrao Ambedkar, widely recognized as the father of the Indian Constitution. The Indian Constitution was authored by the esteemed social reformer, often affectionately called Baba Saheb. He was born on 14th April 1891 in Madhya Pradesh. Despite being born into a poor family, he excelled in his studies and earned degrees in political science and economics. His pursuit of knowledge led him to Columbia University, where he became the first Indian to pursue a doctorate in economics.
हर साल 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन उनके सभी योगदानों के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। वे भारतीय संविधान के पिता भी कहलाए जाते हैं और वे आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। प्यार से उन्हें बाबा साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ी तोड़कर भारत लगभग 200 वर्षों के बाद आजाद हुआ, लेकिन देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कानून की जरूरत थी। इस तरह डॉ भीमराव आम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का गठन किया गया और बाबा साहेब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। आम्बेडकर के पिता रामजी, मालोजी, सखपाल और मां भीमाबाई थीं, लेकिन आम्बेडकर ने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव आम्बेडकर के कहने पर ही अपने नाम से सखपाल हटाकर आम्बेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अम्बावड़े पर था। बाबा साहेब की दो पत्नियां थीं। उनकी सगाई 9 साल की लड़की रामाबाई से हिंदू रीति रिवाज से हुई। शादी के बाद उनकी पत्नी ने पहले बेटे यशवंत को जन्म दिया। आम्बेडकर के निधन के बाद परिवार में दूसरी सविता आम्बेडकर रह गई जो कि जन्म से ब्राह्मण थी. शादी से पहले उनका नाम शारदा कबीर था.
And Himanshu, we have compiled a very, very, you can say, a compilation of unique facts about Dr. B.R. Ambedkar. Very few people know about these things. And let's start about his facet of being a scholar. Well, he was a multifaceted scholar. He was the first person in India to pursue a doctorate. And he had a master's degree in 64 subjects. Can you imagine?
64 vishayon par MA करना, मास्टर्स डिग्री प्राप्त करना, अपने आप में ही सोचकर भी थोड़ा सा एक लगता है कि कैसे उन्होंने किया होगा.
yes.
अगर आज के जमाने की अगर हम बात करें तो आज के जमाने में रिसोर्सेज इतने सारे हैं, सुविधाएं इतनी सारी हैं, और समय रिसोर्सेज रहे होंगे, इंटरनेट है तो सब कुछ है, सुविधाएं हैं, आवागमन की सुविधाएं हैं, और उस समय तो कितनी मुश्किलों में लिमिटेशन थी. और उसके बाद 64 विषयों पर मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करना अपने आप में ही एक अनूठा कीर्तिमान है.
इंडीड अ ग्रेट फीट. एंड ही न्यू 9 लैंग्वेजेस and studied across the world for 21 years. And if you talk about global recognition, well, his statue is the only one of an Indian alongside Karl Marx in the London Museum. And his 20-page autobiography, Waiting for a Visa, is a course textbook at Columbia University in US. He was the first one to paint Lord Buddha with open eyes, which is a departure from the traditional closed-eye depictions. He was also a legal pioneer. He was the first lawyer from a backward caste and the only person to stage a satyagraha for drinking water rights. Today, as we celebrate his birth anniversary, let's remember his contributions to Indian society. His legacy serves as a reminder of the importance of equality, social justice, and the relentless pursuit of knowledge. In many Indian states, it is a public holiday and government offices, schools and colleges are closed on this day.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉ भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती पर संसद परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी. राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत और बहुमुखी व्यक्तित्व वाले बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक न्यायविद, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता के रूप में देश और समाज में असाधारण योगदान दिया. उन्होंने लोगों से डॉ आम्बेडकर के आदर्शों को अपनाने और हमारे देश के समावेशी विकास के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की.
Mr. Dhankar also urged people to embrace the ideals laid by Dr. Ambedkar and work towards realizing his vision of a just and equitable society. The Prime Minister said that with advancement of Dr. Ambedkar's vision, the new image of India is entirely different today. He remarked that Dr. Ambedkar's vision served as an inspiration for the development of the country. Mr. Modi said today the initiatives including Make in India, Smart City Mission, Mudra Yojana, Startup India and Stand Up India are advancing Dr. Ambedkar's vision of inclusive development and nurturing young innovators and entrepreneurs in the country.
सायरा, समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. और जैसा कि डेडलाइन में हमने बताया कि आज डॉ भीमराव आम्बेडकर की जयंती है. उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बीच उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत के वंचितों और महिलाओं की गरिमा के लिए संघर्ष किया. उनके संघर्ष के कारण ही आज देश में शोषित वर्ग और महिलाएं सम्मान के साथ जी रही हैं. बाबा साहब ने अपने जीवन में सदैव शिक्षा पर जोर दिया क्योंकि वे जीवन में शिक्षा के महत्व को जानते थे. कच्छ जिले के एक छोटे से गांव के एक शिक्षक बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर ग्रामीणों और शुभचिंतकों के सहयोग से आम्बेडकर की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए गांव में आम्बेडकर पुस्तकालय का निर्माण किया गया और गांव में शिक्षा की लौ जलाई गई. प्रस्तुत है आकाशवाणी भुज से हमारे संवाददाता भरत देवमणि की रिपोर्ट.
भुज से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर देवीसर नाम का एक गांव है. गांव में शिक्षा का प्रसार बढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से 25 से 30 लोग एक साथ एकत्रित हुए. भीमराव आम्बेडकर लाइब्रेरी बनाई गई. गांव के युवा शिक्षक गणपत भाई जेपार ने यहां सेवा देना शुरू किया. उन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाना शुरू किया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मार्गदर्शन किया. इस सेवा के कारण ही आज इस छोटे गांव के कई विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं कुछ बेटियां सरकारी नौकरी पाकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रही हैं। इसी लाइब्रेरी से पढ़कर गांव की एक बेटी साल 2021 में गुजरात पुलिस में नियुक्त हो गई। गुजरात पुलिस में नियुक्त होने वाली गांव की यह पहली बेटी अपनी सफलता का श्रेय इस लाइब्रेरी को देती है। गणपतभाई जेपार ने पुस्तकालय के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि यह लाइब्रेरी आज किसी के जीवन में रोशनी ला रही है।
सितंबर 2019 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय की स्थापना हुई। एक छोटे से गांव में पुस्तकालय बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय में कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा अभ्यास कर रहे हैं। गांव के युवा जागरूक नागरिक और जयभीम ग्रुप के सदस्य पुस्तकों एवं जरूरी चीज वस्तुओं की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। अगर किसी का जन्मदिन आता है तो वह पुस्तकालय के लिए पुस्तक भेंट देकर जन्मदिन मनाते हैं, जो हमारी एक बड़ी सफलता थी। 2021 की गुजरात पुलिस में भर्ती आई, हमारे गांव की प्रथम महिला कांस्टेबल के रूप में दो बेटियों का चयन हुआ, हमारी सबसे बड़ी सफलता थी। देवीसर गांव में पुस्तकालय बनने से एक तो समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा और साथ में स्त्री सशक्तिकरण का मैसेज सबको मिला।
देवीसर गांव में बने पुस्तकालय से अनेक विद्यार्थी अध्ययन करने लगे, प्रगति करने लगे। पुस्तकालय की सफलता को देखकर अन्य ने अपने अपने गांव में पुस्तकालय शुरू किया। परिक्रमा के लिए परेश मारू के साथ मैं भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, भुज।
And now in our parikrama, we head towards the northeast. In Mizoram, the government is actively pushing for introduction of electric vehicles as part of the Go Electric campaign. Towards this objective, electric vehicle roadshow was held on 12th and 13th of April in Mysore. Our correspondent has more details.
The program was organized by State Designated Agency for Energy Conservation, Government of Mizoram. The roadshow was participated by companies such as Hyundai and TVS. At the national level, the Government of India is introducing electric vehicles in various parts of the country. Electric vehicles are environment friendly, which reduces carbon footprint because there is no emission. Another advantage is that electric vehicles are easy and cheaper to maintain because of their simple structure and operations. Speaking to Akashvani, R.L. Monbui, Chief Electrical Inspector, said that the roadshow is conducted to promote electric vehicles, which will help in energy conservation. She says,
"We Electrical Inspectorate Office, which is FDA for Energy Conservation for the state of Mizoram, are very grateful to be able to conduct a roadshow of electric vehicles at Aizawl. I hope this roadshow is fruitful for promotion of electric vehicles, which is going to help in energy conservation, thereby reduction in fossil fuel consumption. Consequently, this will help problems in climate change, which has been a global issue for many years."
With an aim of promoting electric vehicle in the state, the roadshow is also conducted in various parts of Mizoram. For Parikrama, Irene, Akashvani, Aizawl.
बालकों की जिद के आगे माता पिता को हार माननी पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के एक स्कूल ने विद्यार्थियों से अपने अभिभावकों को चिट्ठी लिखवाकर मतदान करने का आह्वान किया है।
चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। रैलियां और नुक्कड़ नाटकों के साथ साथ मतदाता जागृति के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज भी इसमें पीछे नहीं है। धाराशिव जिले के तुलजापुर तहसील के एक स्कूल टीचर महेंद्र कुमार कावरे ने अपने स्कूल में चलाए गए ऐसे ही एक अभियान की जानकारी आकाशवाणी के साथ साझा की।
लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो स्वीप उपक्रम है, इस उपक्रम के अंतर्गत हमारी पाठशाला नगर परिषद प्राथमिक पाठशाला क्रमांक 2 तुलजापुर जिला धाराशिव के अंतर्गत हमारी पाठशाला में तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं कक्षा के बच्चों को हमने अपने माता पिता को चुनाव में मतदान करने के लिए खत लिखने के बारे में प्रशिक्षण दे दिया था। हमारे मुख्याध्यापक साहब गणेश जी रोजकरी सर ने पोस्ट ऑफिस से खत ला कर दिए। हमारे पाठशाला के सभी बच्चों ने अपने माता पिता को मतदान के बारे में, लोकशाही के बारे में इस खत में जानकारी लिखकर कि आने वाले चुनाव में अपना अनमोल समय निकालकर चुनाव में मतदान कीजिए, इस प्रकार का भावनिक पत्र लिखकर अपने माता पिता को मतदान करने के लिए आह्वान किया है। और गट शिक्षणाधिकारी मैडम, इनामदार मैडम, उन्होंने मार्गदर्शन किया, आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा ऐसी अपेक्षा हमारी है।
आशा है कि बालकों की इस अपील को मानकर सभी अभिभावक लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेंगे और अपना कर्तव्य समझकर मतदान करेंगे। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
And like every day, in view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profiles, giving details of number of phases, dates of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents. Let's start with Sikar.
Sikar Lok Sabha constituency has been formed by combining 8 assembly constituencies, Lakshmangarh Dhod, Sikar, Dataramgarh, Khandela, Sri Madhopur, Neemkathana and Dudu. There are more than 22,32,000 voters in this Lok Sabha constituency. There has been an increase of about 1,90,000 voters compared to the last elections. There was 64.76% voter turnout here in the last election. Hence, continuous efforts are being made by the Election Commission to increase the voting percentage this time. Former soldiers and canal water are the main election issues in this election. A total of 14 candidates, including BJP, CPIM, BSP and other parties, are in the fray for this seat. Congress has formed an alliance with CPIM on this seat and has not fielded its candidate. BJP has expressed confidence for the third time on sitting MP Sumedhanand Saraswati, who has won the election twice. Amra Ram is contesting the elections from CPIM. Amar Chand is the BSP candidate. BJP's Sumedhanand Saraswati is trying for a hat-trick win on the basis of Modi factor and development work, whereas alliance candidate Amra Ram is hoping for a boost in his political career through a shift of Congress votes. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
सीकर लोकसभा सीट राजस्थान की उन 12 लोकसभा सीटों में से एक है जहां 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान के लिए वोट डाले जाएंगे।
यस हिमांशु, एंड आउट ऑफ द 14 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ असम, करीमगंज एंड सिलचर आर सिचुएटेड इन द बराक वैली, द प्रेडोमिनेंटली बंगाली स्पीकिंग एरिया ऑफ द स्टेट। द मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स ऑफ करीमगंज बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, सो वी हैव मोर डिटेल्स फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
Kripanath Mala, the sitting MP and BJP candidate from the constituency, secured 44.62% votes to defeat AIUDF's Radhashyam Vishwas by a margin of 38,389 votes in the last election. This year, a total of 24 candidates are contesting for Karimganj Lok Sabha seat. Sitting MP and BJP candidate Kripanath Mala is trying to reach out to the minority voters, promising them an equal share in development initiatives. The INC candidate advocate Hafiz Rashid Chaudhary is focusing against religious polarization around Citizenship Amendment Act. The AIUDF candidate Shahabul Alam Chaudhary is focusing on security of Rohingya migrants, which has drawn sharp criticism from both INC and BJP. Election scenario in Karimganj thus already has started to pick up the political heat. Shashwati Bhattacharjee reporting from RNU Akashvani Shilchar.
And now it's time for Azadi Ka Safar.
In today's episode, we remember the architect of the Constitution of India, Bharat Ratna Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar, who was born on 14th of April 1891 in Mau, Madhya Pradesh.
Young Ambedkar faced a lot of social discrimination while academically training himself, but he surpassed all of them. He prevailed against all the odds and completed a PhD in economics from Columbia University in New York City. He also secured a DSc in economics from the London School of Economics.
Being a victim of caste discrimination, it inspired him to work towards the cause, and with the help of the Maharaja of Kolhapur, he founded the weekly journal Mooknayak, which criticized the orthodox beliefs of Hindus. He also founded the Bahishrit Hitkarini Sabha to provide education and socio-economic improvement to the backward class. Instead of taking the route of violence, he led a Satyagraha movement, fighting for the rights of so-called untouchables. Baba Saheb was nominated to Bombay Legislative Council in 1926.
In the Pune Pact in 1934, Baba Saheb reached an understanding with Gandhiji accordingly, where instead of a separate electorate, seats were reserved for depressed class legislative assemblies and the Central Council. In 1935, he was appointed as the principal of the Government Law College, and the following year, he founded the Independent Labour Party, which went on to secure 14 seats in the 1937 Bombay elections, when Dr. Ambedkar was also elected to Bombay Legislative Assembly.
In the same year, he published the famous book, The Annihilation of Caste. In 1942, Baba Saheb was nominated to the Governor General Executive Council. He was the only member in the council to handle four portfolios. In 1946, he became a member of the Constituent Assembly.
As the chairman of the drafting committee of the Constitution of India, he aimed to bring about a social revolution in the country, freeing it from any sort of discrimination.
Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning.
The Constitution of India provides the citizens with freedom of religion, advocates rights for women, abolished untouchability, and bridged the gap amongst the classes of the society.
After independence, in 1949, Dr. Ambedkar was appointed as India's first law minister in the interim government of independent India, but resigned in 1951 on the issue of Hindu Code Bill. Dr. Ambedkar also helped establish the Finance Commission of India, and it was through his policies that the nation progressed both economically and socially. He was posthumously awarded the Bharat Ratna in 1990. We salute the great nationalist social reformer.
We also remember freedom fighter Baikunth Shukla, who was martyred on the 14th of April 1933. A resident of district Muzaffarpur, Bihar, Shukla was imprisoned in 1930 for taking part in the salt satyagraha in his region. He was actively associated with a revolutionary party operating in North Bihar in the 1930s. On the 9th of November 1932, Baikunth, along with Chandarma Singh, killed Fanindranath Ghosh, who had turned a prover in the second Lahore conspiracy case. Baikunth Shukla was arrested and put on trial and was hanged on the 14th of April 1933. We salute the great martyr.
और अब खेलों के मैदान की हलचल के बारे में बात करेंगे और सीधा चलते हैं किर्गिस्तान के बिश्केक में, जहां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जारी है और चैंपियनशिप के तीसरे दिन कल भारत ने दो पदक जीते। महिलाओं के 68 किलो भार वर्ग में भारत की पहलवान राधिका ने रजत पदक जीता और शिवानी पवार ने महिलाओं के 50 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। और बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल में इस समय कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच चल रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। टॉस जीता कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और 16 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने बना लिए हैं 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
And another match of IPL is lined up in Mumbai, where Mumbai Indians will lock horns with Chennai Super Kings at the Wankhede Stadium. The match will start at 7:30 in the evening.
अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनका आज जन्मदिन है या जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। सबसे पहले बात करेंगे जमशेद जी जीजाभाई की, उनकी आज पुण्यतिथि है। वे भारतीय पारसी व्यापारी और परोपकारी थे। उन्होंने चीन के साथ कपास के व्यापार में सफलता पाई थी। वे अपने व्यवसाय के साथ साथ दानवीर भी थे, जिसके कारण वो बहुत लोकप्रिय भी थे। आज ही पुण्यतिथि है वेंकट रमन अय्यर रमन महर्षि की। उन्होंने तमिलनाडु स्थित पवित्र अरुणाचला पहाड़ी पर गहन साधना की थी और आत्मविचार बल पर उन्होंने बहुत बल दिया था। भारत के साथ साथ पश्चिम के कई देशों में उन्होंने अपने ज्ञान को फैलाया और लोग आज भी शांति कोच में तिरुवन्नामलाई स्थित रमण महर्षि के आश्रम, अरुणाचला पहाड़ी और अरुणाचलेश्वर मंदिर में जाते हैं। और आज ही पुण्यतिथि है मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया की, जिनको आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ संवरण किया जाता है। और उन्होंने अपना जीवन जो है वो एक बड़े इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, निर्माता के रूप में उन्होंने देश की सेवा की है। और उनका जन्मदिन पड़ता है 15 सितंबर को और अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियरिंग डे के रूप में वो मनाया जाता है।
वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग नितिन बोस टुडे ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। अ डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर एंड स्क्रीन राइटर इन द फिल्म इंडस्ट्री। ही वाज बोर्न इन कैलकटा एंड ऑल्सो डाइड इन द सेम सिटी। And in the 1930s and early 40s, he worked with new theatres that made bilingual movies, that is in both Bengali and Hindi. Later on, he moved to Bombay and directed under the banners of Bombay Talkies and Filmistan. In fact, the first use of playback singing in Indian films occurred in films directed by Bose in 1935. First in Bhagya Chakra, which is a Bengali film, and later the same year in its Hindi remake, Dhoop Chhaon. We have a song.
ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला।
और आज ही पुण्यतिथि है राहुल सांग प्रत्यायन की। उन्होंने हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृतांत और विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांत कारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया था। और आज ही पुण्यतिथि है मंजू सिंह की। वे भारतीय हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री और अच्छी प्रोड्यूसर भी थी। उन्होंने कई सारे शोज प्रोड्यूस किए और 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में छोटे पर्दे पर पहला प्रायोजित कार्यक्रम शो थीम की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी।
टुडे इज ऑल्सो सुबोध मुखर्जीज बर्थ एनिवर्सरी। अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ प्रेडोमिनेंटली हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स, ही वाज अ ब्रदर ऑफ लीडिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर शशधर मुखर्जी। मुखर्जी वॉज अ डेवोटी ऑफ द स्कूल ऑफ मूवी मेकिंग दैट बिलीव दैट फिल्म्स वर ऑल अबाउट ग्रेट स्टोरी टेलिंग। In the first two decades of his career, he had a high success percentage. He continued making movies till the late 1960s before retiring. And Munim Ji, Paying Guest, La Marriage and Jangli are some of the predominant famous films of Subodh Mukherjee. Let's listen to a song.
देखिए उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा, मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां। दिल की उमंग है जवान,
आप भी गाइए ना।
और श्रोताओं, आज है
जन्मतिथि
शमशाद बेगम की, और भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों की शुरुआती पार्श्व गायकों में से एक थी। और उनकी सुरीली आवाज, खनकती आवाज से वो लोकप्रिय थी और महान संगीतकार नौशाद और ओपी नैयर ने उनकी आवाज को तराशा था।
यस, नोटेबल फॉर हर डिस्टिंक्टिव वॉइस एंड रेंज, शी सैंग ओवर 6,000 सॉन्ग्स इन हिंदुस्तानी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल एंड इवन पंजाबी, अमंग विच ओवर 1,000 सॉन्ग्स वर इन हिंदी। And she worked with renowned composers of the time that Himanshu has already told you, like Naushad and Opi Nair, for whom she was one of their favorites. And let's listen to this song. We have one more song of Shamshad Begum. Let's listen
to it. राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे।
और श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए हिमांशु कांडपाल और सायरा सभा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com पर। फिलहाल नमस्कार।
नमस्कार।
Thank you.